गबन का 19वां सर्ग पेश है आपके सामने। प्रातःकाल रमा ने रतन के पास अपना आदमी भेजा। खत में लिखा, मुझे बड़ा खेद है कि कल जालपा ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो उसे न करना चाहिए था। मेरा विचार यह कदापि न था कि रुपये आपको लौटा दूं। मैंने सराफ को ताकीद करने के लिए उससे रुपये ले लिए। कंगन दो चार रोज में अवश्य मिल जाएंगे, आप रुपये भेज दें। उसी थैली में 200 रुपये मेरे भी थे, वह भी भेजिएगा। अपने सम्मान की रक्षा करते हुए जितनी विनम्रता उससे हो सकती थी उसमें कोई कसर नहीं रखी। जब तक आदमी लौट कर न आया वह बड़ी व्यग्रता से उसकी राह देखता रहा। कभी सोचता कहीं बहाना न कर दे, या घर पर मिले ही नहीं, या 2-4 दिन के बाद देने का वादा करे। सारा दारोमदार रतन के रुपये पर था। अगर रतन ने साफ जवाब दे दिया तो फिर सर्वनाश। उसकी कल्पना से ही रमा के प्राण सूखे जा रहे थे। आखिर 9 बजे आदमी लौटा। रतन ने 200 रुपये तो दिए थे मगर खत का कोई जवाब न दिया था। रमा ने निराश आंखों से आकाश की ओर देखा, सोचने लगा रतन ने खत का जवाब क्यों नहीं दिया। मामूली शिष्टाचार भी नहीं जानती, कितनी मक्कार औरत है। रात को ऐसा मालूम होता था कि साधुता और सज्जनता की प्रतिमा ही है, पर दिल में यह गुबार भरा हुआ था। शेष रुपयों की चिंता में रमा को नहाने खाने की भी सुध न रही। कहार अंदर गया तो जालपा ने पूछा, तुम्हें कुछ काम धंधे की भी खबर है कि मटरगस्ती ही करते रहोगे? 10 बज रहे हैं और अभी तक तरकारी भाजी का कहीं पता नहीं। कहार ने त्योरियाँ बदल कर कहा, तो का चार हाथ गोड़ कर लई, कामे से तो गवा रहीन। बाबू मेम साहब के 3 रुपया लेबे का भेजिन रहा। जालपा, कौन मैम साहब? कहार, जौन मोटर पर चढ़कर आवत हैं। जालपा, तो लाए रुपए? कहार, लाए काहे नहीं, पृथ्वी के छोर पर तो राहत हैं, दौरत दौरत गोर पिराए लाग। जालपा, अच्छा चटपट जाकर तरकारी लाओ। कहार तो उधर गया। रमा रुपए लिए हुए अंदर पहुंचा तो जालपा ने कहा, तुमने अपने रुपए रतन के पास से मंगवा लिए ना, अब तुम मुझसे न लोगे? रमा ने उदासीन भाव से कहा, मत दो। जालपा, मैंने तो कह दिया था रुपया दे दूंगी, तुम्हें इतनी जल्दी मांगने की क्यों सूझी? समझी होगी इन्हें मेरा इतना विश्वास भी नहीं। रमा ने हताश होकर कहा, मैंने रुपए नहीं मांगे थे, केवल इतना लिख दिया था कि थैली में 200 रुपये ज़्यादा हैं, उसने आप भेज दिए। जालपा ने हंसकर कहा, मेरे रुपए बड़े भाग्यवान हैं, दिखाऊं? चुन चुन कर नए रुपए रखे हैं, सब इसी साल के हैं, चमाचम देखो तो आंखें ठंडी हो जाएं। इतने में किसी ने नीचे से आवाज़ दी, बाबूजी, सेठ ने रुपए के लिए भेजा है। दयानाथ स्नान करने अंदर आ रहे थे। सेठ के प्यादे को देखकर पूछा, कौन सेठ, कैसे रुपए? मेरे यहाँ किसी के रुपए नहीं आते। प्यादा, छोटे बाबू ने कुछ माल दिया था, साल भर हो गए, अभी तक एक पैसा नहीं दिया। सेठ जी ने कहा है बात बिगड़ने पर रुपए दिए तो क्या दिए, आज कुछ जरूर दिलवा दीजिए। दयानाथ ने रमा को पुकारा और बोले, देखो किस सेठ का आदमी आया है, उसका कुछ हिसाब बाकी है, साफ क्यों नहीं कर देते? कितना बाकी है इसका? रमा को जवाब न देने पाया था कि प्यादा बोल उठा, 700 हैं बाबूजी। दयानाथ की आंखें फैलकर मस्तिष्क तक पहुंच गई। 700? क्यों जी, यह तो 700 कहता है। रमा ने टालने के इरादे से कहा, मुझे ठीक मालूम नहीं। प्यादा, मालूम नहीं क्यों नहीं, पुर्जा तो मेरे पास है, तब से कुछ दिया ही नहीं, कम कहाँ से हो गए? रमा ने प्यादे को पुकार कर कहा, चलो तुम दुकान पर, मैं खुद आता हूँ। प्यादा, हम बिना कुछ लिए न जाएंगे साहब, आप यहीं टाल दिया करते हैं और बातें हमको सुननी पड़ती हैं। रमा सारी दुनिया के सामने जलील बन सकता था, किंतु पिता के सामने जलील बनना उसके लिए मौत से कम न था। जिस आदमी ने अपने जीवन में कभी हराम का एक पैसा न छुआ हो, जिसे किसी से उधार लेकर भोजन करने के बदले भूखों सो रहना मंजूर हो, उसका लड़का इतना बेशर्म और बेगैरत हो, रमा पिता की आत्मा का यह घोर अपमान न कर सकता था। वह उन पर यह बात प्रकट न होने देना चाहता था कि उनका पुत्र उनके नाम को बट्टा लगा रहा है। कर्कश स्वर में प्यादे से बोला, तुम अभी यहीं खड़े हो, हट जाओ, नहीं धक्के देकर निकाल दिए जाओगे। प्यादा, हमें रुपए दिलवाइए, हम चले जाएं, हमें क्या आपके द्वार पर मिठाई मिलती है? रमानाथ, तुम न जाओगे, जाओ लाला से कह देना नालिश कर दें। दयानाथ ने डांट कर कहा, क्यों बेशर्मी की बातें करते हो जी, जब गिरह में रुपए न थे तो चीज लाए ही क्यों, और जब लाए तो जैसे बने वैसे रुपए अदा करो। कह दिया नालिश कर दो, नालिश कर देगा तो कितनी आबरू रह जाएगी, इसका भी कुछ ख्याल है? सारे शहर में उंगलियां उठेंगी, मगर तुम्हें इसकी क्या परवाह? तुमको यह सूझी क्या कि एक बार की इतनी बड़ी गठरी सिर पर लाद ली? कोई शादी ब्याह का अवसर होता तो एक बात भी थी, और वह औरत कैसी है जो पति को ऐसी बेहूदगी करते देखती है और मना नहीं करती? आखिर तुमने क्या सोचकर यह कर्ज लिया? तुम्हारी ऐसी कुछ बड़ी आमदनी तो नहीं है। रमा को पिता की डांट बहुत ही बुरी लग रही थी। उसके विचार में पिता को इस विषय में कुछ बोलने का अधिकार ही न था। निसंकोच होकर बोला, आप नाहक कितना बिगड़ रहे हैं, आपसे रुपये मांगने आऊँ तो कहिएगा, मैं अपने वेतन से थोड़ा थोड़ा करके सब चुका दूंगा। अपने मन में उसने कहा, यह तो आप ही की करनी का फल है, आप ही के पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। प्यादे ने पिता और पुत्र में वाद विवाद होते देखा तो चुपके से अपनी राह ली। मुंशी जी भुनभुनाते हुए स्नान करने चले गए। रमा ऊपर गया तो उसके मुंह पर लज्जा और ग्लानी की फटकार बरस रही थी। जिस अपमान से बचने के लिए वह डाल डाल पात पात भागता फिरता था, वह हो ही गया। इस अपमान के सामने सरकारी रुपयों की फिक्र गायब हो गई। कर्ज लेने वाले बला के हिम्मती होते हैं। साधारण बुद्धि का मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में पड़कर घबरा उठता है, पर बैठक बाजों के माथे पर बल तक नहीं पड़ता। रमा अभी इस कला में दक्ष नहीं हुआ था। इसमें यदि यमदूत उसके प्राण हरने आता तो आंखों से दौड़कर उसका स्वागत करता। कैसे क्या होगा, यह सब उसके एक एक रोम से निकल रहा था। कैसे क्या होगा, इससे अधिक कोई समस्या की और व्याख्या न कर सकता था। यही प्रश्न एक सर्वव्यापी पिशाच की भांति उसे घूरता दिखाई देता था। कैसे क्या होगा, यह शब्द अगणित बगुलों की भांति चारों ओर उठते नजर आते थे। वह इस पर विचार न कर सकता था, केवल उसकी ओर से आंखें बंद कर सकता था। उसका चित्त इतना खिन्न हुआ कि आंखें सजल हो गई। जालपा ने पूछा, तुमने तो कहा था इसके अब थोड़े ही रुपए बाकी हैं। रमा ने सिर झुकाकर कहा, यह दुष्ट झूठ बोल रहा था, मैंने कुछ रुपए दिए हैं। जालपा, दिए होते तो कोई रुपयों का तकाजा क्यों करता? जब तुम्हारी आमदनी इतनी कम थी तो गहने लिए ही क्यों? मैंने तो कभी जिद न की थी, और मान लो मैं दो चार बार कहती भी तो तुम्हें समझ बूझ कर काम करना चाहिए था। अपने साथ मुझे भी चार बातें सुनवा दी। आदमी सारी दुनिया से पर्दा रखता है, लेकिन अपनी स्त्री से पर्दा नहीं रखता। तुम मुझसे भी पर्दा रखते हो। अगर मैं जानती तुम्हारी आमदनी इतनी थोड़ी है तो मुझे क्या ऐसा शौक चर्राया था कि मोहल्ले भर की स्त्री वो तांगे पर बैठा बैठा कर सैर कराने ले जाती। अधिक से अधिक यही तो होता कि कभी कभी चित्त दुखी हो जाता, पर यह तकाजे तो न सहने पड़ते। कहीं नालिश कर दे तो 700 के 1000 हो जाएं। मैं क्या जानती थी कि तुम मुझे यह छल कर रहे हो। कोई वैश्या तो थी नहीं कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना घर भरना मेरा काम होता। मैं तो भले बुरे दोनों ही की साथिन हूँ। भले मैं तुम चाहे मेरी बात मत पूछो, बुरे में तो मैं तुम्हारे गले पड़ूंगी ही। रमा के मुख से एक शब्द न निकला। दफ्तर का समय आ गया था, भोजन करने का अवकाश न था। रमा ने कपड़े पहने और दफ्तर चला। रामेश्वरी ने कहा, क्या बिना भोजन किए ही चले जाओगे? रमा ने इसका कोई जवाब न दिया और घर से निकलना ही चाहता था कि जालपा झपट कर नीचे आई और उसे पुकार कर बोली, मेरे पास जो 200 रुपए हैं उन्हें क्यों नहीं सराफ को दे देते? रमा ने चलते वक्त जानबूझकर जालपा से रुपए न मांगे थे। वह जानता था जालपा मांगते ही दे देगी, लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद अब रुपए के लिए उसके सामने हाथ फैलाते उसे संकोच ही नहीं भय होता था। कहीं वह फिर न उपदेश देने बैठ जाए, इसकी अपेक्षा आने वाली विपत्तियां ही कहीं हल्की थी। मगर जालपा ने उसे पुकारा तो कुछ आशा बंधी, ठिठक गया, बोला, अच्छी बात है, लाओ दे दो। वह बाहर के कमरे में बैठ गया। जालपा दौड़कर ऊपर से रुपए लाई और गिन गिन कर उसकी थैली में डाल दिए। उसने समझा था रमा रुपए पाकर फूला न समाएगा, पर उसकी आशा पूरी न हुई। अभी 300 रुपए की फिक्र करनी थी, वह कहाँ से आएंगे? भूखा आदमी इच्छापूर्ण भोजन चाहता है, दो चार फुलकों से उसकी तुष्टि नहीं होती। सड़क पर आकर रमा ने एक तांगा लिया और उसे जॉर्ज टाउन चलने को कहा, शायद रतन से भेंट हो जाए, वह चाहे तो 300 रुपए की बड़ी आसानी से प्रबंध कर सकती है। रास्ते में वो सोचता जाता था, आज बिल्कुल संकोच न करूंगा। जरा देर में जॉर्ज टाउन आ गया, रतन का बंगला भी आया। वह बरामदे में बैठी थी। रमा ने उसे देखकर हाथ उठाया, उसने भी हाथ उठाया, पर वहां उसका सारा संयम टूट गया। वह बंगले में न जा सका, तांगा सामने से निकल गया। रतन बुलाती तो वह चला जाता, वह बरामदे में न बैठी होती तब भी शायद वह अंदर जाता, पर उसे सामने बैठे देखकर वह संकोच में डूब गया। जब तांगा गवर्नमेंट हाउस के पास पहुंचा तो रमा ने चौंक कर कहा, चुंगी के दफ्तर, तांगे वाले ने घोड़ा फेर दिया। 11 बजते बजते रमा दफ्तर पहुंचा, उसका चेहरा उतरा हुआ था, छाती धड़क रही थी। बड़े बाबू ने जरूर पूछा होगा, जाते ही बुलाएंगे, दफ्तर में जरा भी रियायत नहीं करते। तांगे से उतरते ही उसने पहले अपने कमरे की तरफ निगाह डाली, देखा कई आदमी उसकी राह देख रहे हैं। वह उधर न जाकर रमेश बाबू के कमरे की ओर गया। रमेश बाबू ने पूछा, तुम अब तक कहाँ थे जी? खजांची साहब तुम्हें खोजते फिरते हैं, चपरासी मिला था? रमा ने अटकते हुए कहा, मैं घर पर न था, जरा वकील साहब की तरफ चला गया था, एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। रमेश, कैसी मुसीबत, घर पर तो कुशल है? रमानाथ, जी हाँ घर पर तो कुशल हैं, कल शाम को यहाँ काम बहुत था, मैं उसमें ऐसा फंसा कि वक्त की कुछ खबर ही न रही। जब काम खत्म करके उठा तो खजांची साहब चले गए थे। मेरे पास आमदनी के 800 रुपये थे। सोचने लगा इसे कहाँ रखूँ, मेरे कमरे में कोई संदूक है नहीं। यही निश्चय किया कि साथ लेता जाऊँ। 500 रुपये नकद थे वह तो मैंने थैली में रखे, 300 रुपये के नोट जेब में रख लिए और घर चला। चौक में दो एक चीज़ें लेनी थी, उधर से होता हुआ घर पहुँचा तो नोट गायब थे। रमेश बाबू ने आँखें फाड़ कर कहा, 300 के नोट गायब हो गए? रमानाथ, जी हाँ, कोट के ऊपर की जेब में थे, किसी ने निकाल लिए। रमेश, और तुमको मारकर थैली नहीं छीन ली? रमानाथ, क्या बताऊँ बाबूजी, तब से चित्त की जो दशा हो रही है वो बयान नहीं कर सकता। तब से अब तक इसी फिक्र में दौड़ रहा हूँ, कोई बंदोबस्त न हो सका। रमेश, अपने पिता से तो तुमने कहा ही न होगा। रमानाथ, उनका स्वभाव तो आप जानते हैं, रुपये तो न देते उल्टी डांट सुनाते। रमेश, तो फिर क्या फिक्र करोगे? रमानाथ, आज शाम तक कोई ना कोई फिक्र करूंगा ही। रमेश ने कठोर भाव धारण करके कहा, तो फिर करो ना, इतनी लापरवाही तुमसे हुई कैसे? यह मेरी समझ में नहीं आता, मेरी जेब से तो आज तक एक पैसा न गिरा। आंखें बंद करके रास्ता चलते हो या नशे में थे? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं आता, सच सच बतला दो, कहीं अनाप शनाप तो नहीं खर्च कर डाले? उस दिन तुमने मुझसे क्यों रुपये मांगे थे? रमा का चेहरा पीला पड़ गया, कहीं कलई तो न खुल जाएगी। बात बनाकर बोला, क्या सरकारी रुपया खर्च कर डालूंगा, उस दिन तो आपसे रुपये इसलिए मांगे थे कि बाबूजी को एक जरूरत आ पड़ी थी, घर में रुपये न थे, आपका खत मैंने उन्हें सुना दिया था। बहुत हंसे, दूसरा इंतजाम कर लिया, इन नोटों के गायब होने का तो मुझे खुद ही आश्चर्य है। रमेश, तुम्हें अपने पिताजी से मांगते संकोच होता हो तो मैं खत लिख कर मंगवा लूँ? रमा ने कानों पर हाथ रख कर कहा, नहीं बाबूजी, ईश्वर के लिए ऐसा न कीजिएगा, ऐसी ही इच्छा हो तो मुझे गोली मार दीजिए। रमेश ने क्षण तक कुछ सोचकर कहा, तुम्हें विश्वास है शाम तक रुपए मिल जाएंगे? रमानाथ, हाँ आशा तो है। रमेश, तो इस थैली के रुपए जमा कर दो, मगर देखो भाई, मैं साफ साफ कह देता हूँ, अगर कल 10 बजे रुपए न लाए तो मेरा दोष नहीं। कायदा तो यही कहता है कि मैं इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले करूं, मगर तुम अभी लड़के हो इसलिए क्षमा करता हूं, वरना तुम्हें मालूम है मैं सरकारी काम में किसी प्रकार की मुरावत नहीं करता। अगर तुम्हारी जगह मेरा भाई या बेटा होता तो मैं उसके साथ भी यही सलूक करता, बल्कि शायद इससे सख्त। तुम्हारे साथ तो फिर भी बड़ी नरमी का कर रहा हूँ, मेरे पास रुपए होते तो तुम्हें दे देता, लेकिन मेरी हालत तुम जानते हो। हाँ, किसी का कर्ज नहीं रखता, न किसी को कर्ज देता हूँ, न किसी से लेता हूँ। कल रुपए न आए तो बुरा होगा, मेरी दोस्ती भी तुम्हें पुलिस के पंजे से न बचा सकेगी। मेरी दोस्ती ने आज अपना हाँ मेरी दोस्ती ने आज अपना हक अदा कर दिया, वरना इस वक्त तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होती। हथकड़ियां, यह शब्द तीर की भांति रमा की छाती में लगा, वह सिर से पांव तक कांप उठा। उस विपत्ति की कल्पना करके उसकी आंखें डबडबा आई, वह धीरे धीरे सिर झुकाए सजा पाए हुए कैदी की भांति जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। पर यह भयंकर शब्द बीच बीच में उसके हृदय में गूंज जाता था। आकाश पर काली घटाएं छाई थी, सूरज का कहीं पता न था। क्या वह भी उस घटारूपी कारागार में बंद है? क्या उसके हाथों में भी हथकड़ियां हैं?